इसके बाद अब अंबिया कराम की कुछ बातें होंगी। सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की कहानी, जिसका एक पैगाम क्या है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, 23 से 28 है। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पैगाम इसमें क्या है कि तौहीद के नाम पे टूटी फूटी कश्तियाँ भी जिंदगी के थपेड़ों में बच जाएंगी, एडवर्सिटी के ऊपर काबू पा लेंगी, लेकिन अल्लाह के इनकार या उसके साथ शिर्क के साथ बड़े बड़े पहाड़ भी नहीं बचाएंगे। सूरत हूद में हम बड़ी डिटेल से किस्सा पढ़कर आए हैं कि बेटा बाप की आंखों के सामने डूब गया और अल्लाह ने वो 60-70 लोगों को बचा लिया। फिर इसमें हज़रत नूह की एक दुआ बड़े प्यार से आप देख लीजिए, आयत 29 में, और रब्बी अनजिलनी मुनजलम मुबारकम वअंत खैरुल मुनजिलीन। आप भी इसको बहरी सफ़र के साथ रिलेट करके पढ़ सकते हैं, क्या क्या मेरे रब मुझे उतारना बरकत वाला, और आप तो बेहतरीन है मुंजिलीन वाले, यानी आप उतारने वाले बेहतरीन हैं। क्या पता चला कि जहाँ भी कहीं जाएं अल्लाह से ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इस इलाके में, इस जगह में मेरे लिए बरकत और खैर रख दे। फिर आगे आए 30 से 34 में, नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम का जिक्र है जिनको यहाँ अल्लाह ताला ने नाम लिए बगैर क्या कह दिया कि हर नबी के साथ एक ही मामला हुआ कमोबेश। बड़े लोगों ने झुठलाया, छोटों ने मान लिया। क्यों भाई? इसलिए कि बड़े लोगों के बहुत सारे मुफादात टकराते हैं नबी की दावत से। उनको सूद मुश्किल लगता है छोड़ना, उनको शराब की आदत है तो शराब का मसला आ गया, और इसी तरह से वो खुद चुके बड़े हैं तो वो अल्लाह की बड़ाई को क्यों माने। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वही जो हर नबी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन होते रहे, ये बड़े ये छोटे ये है वो है, तो अल्लाह ताला ने उनका तذکرہ करके असल में अल्लाह के नबी को तसल्लियाँ दी हैं कि आप बेफिक्र हो जाइए, हर दौर के लोग अपने वक्त के मोहसिनों के साथ यही करते हैं। और आगे फिर एक जालिम कौम का बुरा अंजाम, आयत 35 से 43 में, अयदुकुम, क्या ये वादा देता है तुमको कि क्या तुम दोबारा मरने के बाद, मट्टी बनने के बाद, हड्डियाँ बनने के बाद निकाले जाओगे? है हा ता बड़ा ही दूर है, बड़ा ही दूर है लिमात हुआ दून। मक्का वाले जिस अकीदे पे थे उसका तस्करा, कहते थे हाय हाउ कम, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे होगा कि मर गए, मट्टी में मट्टी हो गए, हड्डियाँ भी गुल गई और हम दोबारा निकल जाएं या निकाल दिए जाएं। अल्लाह कहते पहली दफ़ा कैसे बने थे? जो इंसान अपनी पहली पैदाइश पे गौर करे, अभी तक जो सूरत का तसलसल चल रहा है कि अगर तुमने अपनी पहली तख्लीक पे गौर कर लिया तो पहले तो कुछ भी नहीं था, चलो अब हड्डी है पुरानी ही सही। तो मुराद क्या है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे, लेकिन लोगों का नजरिया के इन ही लाहयात न दुनिया न मोत व ना हया, भाई ये जिंदगी तो दुनिया की जिंदगी है, हम मरते हैं और जीते हैं और हम कोई नहीं दोबारा उठाए जाएंगे। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारा अकीदा है कि मरने के बाद उठाए जाएंगे, लेकिन लेकिन हमारा लाइफस्टाइल और हमारी इस दुनिया में इन्वॉल्वमेंट और मोहब्बत जुबाने हाल से बता रही है कि हमें इस दुनिया की बड़ी फिक्र है। समा 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हम अपने आप को सेट करते हैं तो औलादें सामने आती हैं, फिर औलादों की सेटिंग में उनके बच्चे, पहले अपने घर हम अपग्रेड कर रहे होते हैं, फिर बच्चों के और फिर बच्चों के बच्चे, और फिर हम एक आखिरत जिसको बिल्कुल किसी वक्त भी अल्लाह हमारे सामने ले आएगा, कई दफ़ा उससे गाफिल होकर सिर्फ दुनिया के गमों और दुनिया की खुशियों में जागते हैं। तो आपके लिए मेरे लिए नायात का पैगाम क्या है कि हमने इस दुनिया को ज़रूरत पे रखना है। अच्छा खाइए, अच्छा पहने, अच्छा साफ सुथरा घर रखिए, आप भी खुश, दूसरे भी खुश, लेकिन इसको मकसद ना बनाएं। ये जुमला लिख लीजिए, दुनिया ज़रूरत है मकसद नहीं है। ये हमारे हाथों में होनी चाहिए, हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए। उसके आगे आले फिरौन की बदबख्ती की कुछ बातें हैं, आयत 44 से 49 में। आप इस सूरत में देख रहे हैं कि किससे तफसील से नहीं आए, बस उनके ऊपर कमेंट्स हैं कि अल्लाह कहते हैं कि अंबिया इकराम का सिलसिला जो हज़रत नूह से हम शुरू कर रहे हैं, अगर होते होते सुम अरसल न रसुलना ततरो वन बाय वन कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली नबी आते गए हद तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया, और उनके साथ हारून अलैहिस्सलाम और सुल्तान मुबीन। अल्लाह ने उनको जो यद बैज़ा और असा के सांप बनने का जो मौजज़ा दिया था उसकी भी तरफ इशारा है, किधर भेजा था? इला फिरौन। अपने आप को बड़ा बनाने वाला और समझने वाला भी था और तकबर बहुत करता था। और उसने बनी इसराइल को चूके गुलाम बना रखा था। वही मुकालमा जो पीछे है, हमें इसमें क्या मैसेज मिल गया कि अगर किसी वक्त आपको भी दुनिया में एज अ मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम के सामने जाकर खड़ा होना पड़े, तो पूरे एतमाद के साथ कौलन लय्यिना, नरम तरीके से अल्लाह और उसके दीन की तरफ बुलाना चाहिए, क्या पता वो मान जाए। क्योंकि लअल्लहुम यहतदून, तौरात क्यों दी गई, ताकि शायद वो हिदायत पा ले। तो क्या पता चला कि फिरौन जैसे इंसान से भी जिंदगी भर मायूस ना हो, इल्ला ये कि वो कुफर पे मर जाए। इसके बाद अब तरतीब से चलें तो हज़रत ईसा का जिक्र है। आयत 50 में हज़रत मरियम और इब्ने मरियम पर अल्लाह के इनामात, उनका करम क्या है। व जालनब्न मरियम व उम्महु आया। आप देखिए कि वाहिद शख्स हैं कुरान में जिनको उनकी माँ से जोड़ा जाता है। अमूमन बाप का नाम होता है। अम्बिया में एक और नबी हैं हज़रत यूनुस, उनको भी उनकी माँ से निस्बत दी जाती है, लेकिन कुरान में उनका इस तरह से तذکرہ नहीं है। क्या पता चला कि इब्ने मरियम और उनकी माँ निशानियाँ थीं, और हमने उनको जगह दी एक बुलंद पहाड़ी पे, इला रबवतिन ज़ाति करारे मकीन, जो बड़ी ठहराव वाली थी, पानी भी वहाँ जारी था। असल में इशारा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बैतुल लहम में जो हुई थी, और वहीं उनका बचपन और वो चाइल्डहुड गुजरा उसकी तरफ। बैतुल मक़दस ही के करीब ये जगह है। लेकिन इससे आपको मुझे क्या मैसेज मिला कि बाप नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को तन्हा नहीं छोड़ा। तो माँ बाप को सहारा नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तड़पने वाले, हमारे दुख सुख में जलने वाले वो लोग होते हैं कि जिनकी हमें हमेशा कदर करनी है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो 51 से 53 में हलाल और हराम खाने के असरात। जी बिल्कुल होते हैं। आप जो खाकर बैठते हैं ना, उसका असर है। सहरी में अगर आपने कोई कड़वी चीज़ खा ली, सारा दिन उसका असर रहेगा, प्यास लगेगी। आप करेले खा लें, सारा दिन गला सूखेगा। आप लस्सी पी लेते हैं या दही खा लेते हैं, आप कहते हैं गला नरम हुआ। जिस तरह किसी भी खाने के जाहरी असरात होते हैं ना, इसी तरह उसके बातनी असरात हैं। तो खाना हलाल या हराम दो तरह से होता है, लिखना चाहें तो लिख लें, फी नफसी ही, यानी कोई खाना अपनी ज़ात के साथ हलाल है या हराम है। मतलब देखिए कि सुअर का गोश्त ज़ात से ही हराम है, इसको तो खाने नहीं। गंदी चीज़ें, बदबूदार चीज़ें, मक्खियों वाली चीज़ें, बासी चीज़ें। लेकिन एक दूसरे की चीज़ तो बड़ी प्यारी है। इतना बड़ा सेब है, मज़े का, देखने में खूबसूरत, सब कुछ बहुत ही अच्छे ऑरेंजेस हैं, लेकिन जिस पैसे से उसको ख़रीदा वो ठीक नहीं है। हमें इन दोनों को देखना है। और हराम खाने का एक असर औलादों की नाफरमानी या औलादों के सदमों की सूरत में भी सामने आ जाता है। फिर इसके बाद गाफिलों के लिए वईद है आयत 54 से 56 में, फजरहुम, आप छोड़ दीजिए इनको, फी गमरतिम, इनकी गफलतों में, हत्ता हीन एक वक्त तक, यानी इनको इनके हाल पे छोड़ दें। आप देखिए, आप किसी इंसान के लिए बड़ा तड़पते हैं, आपके दिल में उसके लिए बड़ी मोहब्बत होती है, ख़ास तौर पे जो माँ को प्यार होता है ना आपसे, वो दुनिया में किसी को नहीं हो सकता, ये लिख के रख ले। माँ मोहब्बत का एक सिंबल है, बाप का भी यही हाल है। लेकिन माएँ चूँकि रकीकुल कल्ब होती हैं, इमोशनल होती हैं, और आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन औलाद को माँ बाप से वो मोहब्बत नहीं होती जो माँ बाप को औलाद से होती है, क्योंकि यही मोहब्बत उनको अपने बच्चों से होगी। क्योंकि इंसान का मुस्तकबिल होता है, उसको होता है। इसीलिए आप देखिए, पूरे कुरान में कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि अपने बच्चों से प्यार करो, लेकिन माँ बाप से मोहब्बत और उनके ऊपर एहसान की बात बहुत ज़्यादा आती है। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में क्या बता दिया कि जिनको नाफरमानियों के बावजूद दुनिया में रिस्क मिला हुआ है, या वो बहुत मौजें करते दिख रहे हैं, आप उनके ऊपर रश्क ना करें। नसारी लहुम फिल खैरात बल्ला यशुरून, यानी ये किस्म की उनकी ढील है, अल्लाह उनको पकड़ रहा है। मतलब क्या है कि नेकियों के साथ दुनिया में अल्लाह की रहमत हो तो ये उसका इनाम है, गुनाहों के साथ दुनिया में अगर माल औलाद बेटे और सब कुछ और खैरात मिल रही हैं, खूबियाँ ही खूबियाँ, फ़ायदे ही फ़ायदे, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक पकड़ भी है। फिर उसके बाद आयत 57 से 61 में मोमिनों की बातनी कैफियत, इनसाइट, अंदर से कैसा होता है। चलिए आप यहाँ बैठकर अपने आप से पूछिए, क्या मैं मोमिना हूँ? क्या मेरे दिल के अंदर ईमान का दीप है, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं, कहीं मैं फासिक तो नहीं। तो इस कैफियत को देख लीजिए, इन्नल्लज़ीनहुम मिन खशयति रब्बिहिम मुशफिकून, वो अपने रब की खशियत से डरते रहते हैं। और वो लोग जो अपने रब की आयतों पर ईमान लाते हैं और वो अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते, और फिर वो जो देते हैं तो देते हैं इसके बावजूद उनके दिल डर रहे होते हैं कि हमने अपने रब की तरफ लौटना है, यही लोग हैं जो जल्दी करने वाले हैं नेकियों में और यही आगे निकल जाएंगे। वही बात जो शुरू में हमने देखी वही आयत में से थी। क्या पता चला? हज़रत आयशा से रिवायत मिलती है जिसका खुलासा है कि ये आयत क्या उन लोगों के लिए जो गुनाह करते हैं, चोरियाँ हो जाती हैं उनसे, कोई गुनाह होते हैं फिर वो डरते हैं? तो आपने कहा नहीं, वो सिद्दीक की बेटी सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा कि इससे मुराद तो वो लोग हैं जो नेकियां करके भी डरते हैं कि पता नहीं अल्लाह के यहाँ कबूल होगा नहीं। आप इसको एक फीलिंग से समझिए, आप किसी बहुत मनपसंद मेहमान के लिए खाना बना लें, सब कुछ अच्छा बनता है, फिर भी एंड पे दिल में क्या होता है, पता नहीं उनको पसंद आएगा कि नहीं, पता नहीं उनके टेस्ट का है कि नहीं। और खाने के अलावा हर चीज़ में हम यही करते हैं। तो बस इसको अल्लाह ताला के साथ रखिए, तो हमेशा नेकियां करते हुए डरते रहिए। फिर इसके बाद गाफिल दिल का इंजाम है आयत 62 से 67 में, वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और हम किसी नफ्स को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी वुसत से ज़्यादा, यानी वुसत से ज़्यादा कोई भी आजमाया नहीं जाता। और क़यामत के दिन हमारी किताब नामे अमाल की सूरत में बोलेगी। फिर दिलों की गफलतों की बात करके, कुछ अमाल की बात करके अल्लाह ने कहा जो बहुत दुनिया में दौलत और माल वाले होते हैं और अल्लाह को भूल जाते हैं, जब वो अजाब देखेंगे तो वो डक्कारेंगे। इज़ाहुम यजअरून, यजअरून कहते हैं जानवर का डक्कारना, जैसे गाय भैंस बकरी की को बड़ी सी आवाज़ आप समझें, क्या कहा जाएगा, ला तजअरुल यौम, आज मत चीखो, इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, तुम हमारी तरफ से मदद ना दिए जाओगे, कसूर क्या तुम्हारा, कद कानत आयाति तुतला अलैकुम, बेशक तुम पर हमारी आयतें पढ़ी जाती थी, फकुन तुम अलाकाबिकुम तनकिसुम, तुम अपनी एड़ियों पे फिर जाते थे, मुस्तकबिरीन बिही सामिरा, तुम तकब्बुर करते हुए सामिरन तहजुरून बन जाते थे। पता है वो क्या होता है, रातों की किस्सा गोइयां। सामिर, सामिरी का लफ्ज़ सुना है ना, और तहजुरून में हजर आया, यानी अरब लोगों का कल्चर था कि दिन चूंकि गर्म होते थे तो रातों में जागते थे, आज भी यही कल्चर है। और रातों में जागकर अब तहज्जुद कुरान पढ़ेंगे तो फौरन नींद आ जाएगी, जिसको नींद नहीं आती वो कुरान खोल ले, देखिए कितने मिनट में आती है। सबसे बेस्ट स्लीपिंग पिल कुरान है, आजमा के देख लीजिएगा। वो क्या करते थे, रौन के महफिलें, ड्रामे और फिल्में और गाने बजाने, तो रूह को तो इतने के चौके लग रहे हैं तो नींद कहाँ से आएगी। अल्लाह ने उनकी गफलतों की बात की, और याद रखिए रात गफलत में गई तो अगला दिन ज़ाया हो गया। अल्लाह हमारी उम्मत की रातों को बेहतरीन तरीके से गुजारने वाला बना दे। फिर उसके बाद मुशरिकीन ने मक्का पे अजाब क्यों आया, इसकी वजह 68 से 71 में दिख रही है, और बड़ी साफ सी बात है, लम यारिफू रसूलहुम, अल्लाह ने अपना इतना प्यारा तोहफा, इतनी प्यारी शख्सियत नबी सल्लम की सूरत में मक्का वालों को दी थी, लेकिन उन्होंने कहा इस पे तो जुनून है, और ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, यानी उन्होंने नबी सल्लम को नहीं माना। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लीजिए कि आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की, इसलिए अब अगली आयतों में 72 से 77 में अल्लाह के नबी की दिलजोई है। देखिए जो बड़े इखलास से बड़ी मोहब्बत से आपसे बात करे, जिसको आपसे प्यार भी है, वो आपका खैर ख्वाह भी है, और आप उसकी कदर ही ना करें, आप उसकी बात ही ना माने, तो उसको दुख होगा ना। तो अल्लाह ताला ने यहाँ आपको तसल्ली दी कि बेफिक्र हो जाए, ये जो कर रहे हैं ना करने दें, आप तो इनसे कुछ नहीं मांगते, आपको इनसे क्या लेना है, आप तो जो करते हैं रब की रज़ा के लिए करते हैं, और आप तो इनको सिराते मुस्तकीम की तरह बुला रहे हैं, लेकिन जिनका आखरत पर ईमान नहीं है वो तो रास्ते से भटक जाते हैं, वो तो ऐसे टर्न लेते हैं करीब से भी, नहीं नहीं हमें नहीं करना, मस्जिद के करीब से गुजर जाएंगे नमाज नहीं पढ़ेंगे, मक्का के करीब से गुजर जाएंगे उम्र और हज नहीं करेंगे, क्योंकि इनका दिल उसमें नहीं लटका हुआ, इनका दिल नहीं उसमें, लिहाजा इनको छोड़ दीजिए। हाँ जब इनके ऊपर हमारी पकड़ आएगी फिर चीखेंगे, फिर आजिज़ी करेंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या पता चला कि नबी को सताने वाले किसी दौर में भी खुश नहीं रह सके। फिर फिर इसके बाद आगे देखिए आयत 78 से 83, अल्लाह ताला के एहसानात और बंदों की नाशुक्री। पहले तो अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे अपनी शुक्र गुजार बंदी बना ले, अल्लाह मुझे नेमतों की कदर करने वाला बना दे। वहुवल्लज़ी अंशअलकुम उस्समअ वल्अबसार वल्अफ़िदा। आप ज़रा उंगलियों पे गिनते जाइए, अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ हमें किन किन नेमतों पे गौर करने की दावत दी है। समा, आप सुनिए, अगर हम बहरे होते, अपने लिए लिख लें, अगर मैं बहरी होती तो मैं क्या क्या सुनने से महरूम रह जाती। अबसार, अगर मैं अंधी होती तो मैं क्या करती। और अगर मेरा दिल काम करना छोड़ दे तो मैं यहाँ खड़े खड़े ख़त्म हो जाऊँ। लेकिन कलीलम्मा तशकुरून, कितना थोड़ा है जो तुम शुक्र करते हो और कितने थोड़े हो जो तुम शुक्र करते हो। फिर आगे ज़मीन से कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई, जीने मरने के साथ रात और दिन के आने जाने, और क्या काफ़लात आकिलून, अकल तो इस्तेमाल करो, ये अल्लाह ने तुम्हें बेकार चीज़ों के लिए तो नहीं दी। लेकिन वही बात है, ना मानने की बातें कहने लगे, ये तो कुछ नहीं। असल में जो बात आप बाप दादा से सुन रहे होते हैं ना, ख़ानदान, बिरादरी, नस्ल दर नस्ल, आपने बचपन में वही करते देखा हुआ, फिर बड़े होके आप भी वही करने लग गई और अब तो आप पक्की हो गई, इंसान उससे पीछे नहीं होता। तो मक्का वालों को नबी सल्लम की बात बाप दादा के नाम पे नहीं समझ आई। क्या कहते थे, इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो फोक टॉक्स हैं, ये पुरानों की कहानी है। आज भी लोग कहते हैं, क्या आप कुरान पढ़ने जाती हैं, इतनी पुरानी किताब, कोई नई चीज़ पढ़िए, कोई फिक्शन पढ़िए, कोई कंप्यूटर सीखिए, ये वो। तो उसका जवाब है कि जितना आसमान पुराना है, फिर इसके नीचे से भी गुजरना छोड़ दीजिए, ज़मीन भी तो इतनी पुरानी है, तो कुरान तो कभी भी पुराना नहीं होता। उसके बाद फिर आयत 84 से 92 में सोचने पे मजबूर करने वाले 3 सवालात, ज़रा सोचिए। अल्लाह तआला, कुल लिमनिल अर्दु व मन फीहा इन कुंतुम तालमून। पहला सवाल क्या है, लिमनिल अर्दु व मन फीहा, ये किसने बनाई, किसकी है ज़मीन और जो कुछ इसमें, बताओ ये आसमान किसका है, ये ज़मीन किसकी है, ये कौन है इसका फाउंडर, कौन है इसको बनाने वाला। जवाब देंगे अल्लाह, तो फला तज़क्करून, फिर सोचते क्यों नहीं हो। फिर अल्लाह ताला इनसे जो सवाल करते, मर रब्बुस समावाति सब्बी व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये कौन है आसमान और ज़मीन का रब और अर्श अज़ीम का रब। ये सेकंड क्वेश्चन है, सशगुलून लिल्ला, कहेंगे अल्लाह का है, कुल अफला तत्तकून, अच्छा फिर तुम उससे डरते नहीं। और फिर तीसरा सवाल, कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन, कौन है भाई जिसके हाथों में आज सारी चीज़ों की मलकूत है। वहुवा युजीरु वला युजारु अलैहि, वो पनाह देता है और उसके खिलाफ कोई पनाह नहीं दे सकता। इन कुंतुम तालमुन, सयकूलून लिल्लाह, हर बात के सवाल के जवाब में क्या कह रहे थे, अल्लाह अल्लाह। तो कहा, कुल फन्ना तुसखरू, फिर तुम पे क्या हो गया, तुम क्यों सहर किए जाते हो। तो क्या पता चला कि तौहीद रबूबियत को सब मानते थे, असल मसला आज भी और कल भी तौहीद अलूहियत का था।